लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे लघु और मध्यम व्यवसायों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि आर्थिक और सामाजिक संकट के बावजूद वे अपना व्यवसाय जारी रखने और अपने समुदायों की सेवा करने के तरीकों की तलाश करने में सक्षम बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने प्रोत्साहन दिया है कि हम नहीं डरें, क्योंकि हमारा जीवन ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ है, किंतु हमें सभी समय ईश्वर और हमारे भाई बहनों की सेवा हेतु तैयार, चौकस एवं सावधान रहना है। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 7 अगस्त को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
करी फ्रतेली सोरेले बोनजोर्नो,
प्रिय भाइयों एवं बहनों सुप्रभात।
नेल वांजेलो देला लिटुर्जिया ओडियर्ना येशु पार्ला ई डिसेपोली पर रासिकुरार्ली दा ओनी पाउरा ए पर इनविटार्ली अला विजिलांसा।
आज के धम्म विधि के सुसमाचार पाठ में यीशु शिष्यों से बात करते हैं कि उन्हें नहीं डरने का आश्वासन दें तथा जागते रहने का निमंत्रण दें। वे उन्हें दो मौलिक आह्वान देते हैं। पहला, छोटे झुंड डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देने की कृपा प्रदान की है, और दूसरा, तैयार रहो। ये दो मूल शब्द हैं जो हमें उस भय पर विजय दिलाते जो हमें लकवाग्रस्त कर देते तथा निष्क्रिय एवं निंद्रापूर्ण जीवन के प्रलोभन से ऊपर उठने में मदद देते हैं। संत पापा ने इन दोनों निमंत्रणों पर चिंतन किया। उन्होंने कहा, सबसे पहले यीशु शिष्यों को प्रोत्साहन देते हैं। उन्होंने अभी अभी पिता के प्रेम एवं भविष्य की देखभाल के बारे बात करना समाप्त किया, जो खेतों के शोषण और हवा के पक्षों की परवाह करते और इसलिए अपने बच्चों के लिए अधिक चिंता करते हैं। अतः हमें अपने जीवन के लिए चिंता करने एवं डरने की बात नहीं है। हम यीशु से नहीं डरने के निमंत्रण से खुश हैं। निश्चय ही कई बार हम अपने में कैद, विश्वासघात एवं चिंता महसूस करते हैं। यह असफलता का डर है, नहीं पहचाने जाने, प्यार नहीं किए जाने, हमारी योजनाओं के पूरा नहीं होने, कभी खुश नहीं हो पाने आदि का डर, और इसलिए हम समाधान खोजते हैं। हम एक जगह खोजते हैं जिसमें पनप सकें, माल और धन जमा करते हैं ताकि सुरक्षा प्राप्त कर सकें। अंततः हम चिंतित हो जाते और लगातार परेशान रहते हैं, परंतु यीशु हमें आश्वासन देते हैं, डरो मत, पिता पर भरोसा रखो जो उन सभी चीजों को प्रदान करना चाहते हैं जिनकी हमें सचमुच जरूरत है। उन्होंने पहले ही हमें अपना पुत्र और अपना राज्य दिया है और अपनी कृपा से हमेशा पोषित करते रहेंगे, हर दिन हमारी देखभाल करेंगे, डरो नहीं। संत पापा ने कहा कि यही निश्चितता है जिससे हमारे दिलों को जुड़ा होना चाहिए, किंतु उन्होंने जागरूक रहने के महत्व पर जोर देते हुए कहा,
Ma sapere che il Signore veglia con amore su di noi e non ci autorizza a dormire.
यह जानना कि प्रभु हम पर प्रेम से नजर डालते हैं, हमें सोने का अधिकार नहीं देता, हमें आलसी बने रहने नहीं देता, इसके विपरीत हमें जागरूक बनना है। निश्चय ही प्रेम करने का अर्थ है दूसरों का ख्याल रखना, उनकी जरूरतों के प्रति सचेत रहना, सुनने तथा उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहना। तैयार रहना दूसरा निमंत्रण है। शेक्सपियर के हैमलेट का भी कहना है कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में, चाहे यह प्रतिकूल या आनंदमय हो, तत्परता ही सब कुछ है। यह ख्रिस्त प्रज्ञा है। यीशु इस निमंत्रण को कई बार दोहराते हैं और आज वे इससे तीन छोटे दृष्टांतों द्वारा बतला रहे हैं, जिनका केंद्र बिंदु घर के स्वामी हैं, जो एक शादी के भोज से अप्रत्याशित रूप से लौटते हैं। दूसरे दृष्टांत में वे चोरों से हैरान नहीं होने देना चाहते हैं, और तीसरे में एक लंबी यात्रा से लौटते हैं। सभी में संदेश एक ही है, जागते रहना जरूरी है, नहीं सो जाना है, अर्थात विचलित नहीं होना है, आंतरिक शिथिलता को जगह नहीं देना है, क्योंकि प्रभु ऐसी परिस्थितियों में आते हैं जब हम उनकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे होते, और हमारे जीवन के अंत में वे हमें उन चीजों का हिसाब देने को कहेंगे जिनको उन्होंने हमारे जिम्मे में सौंपा है। अतः जागते रहने का अर्थ जिम्मेदार होना भी है, अर्थात उन चीजों की रक्षा एवं प्रबंध निष्ठापूर्वक करना है। हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है, जीवन, विश्वास, रिश्ते, नौकरी और साथ ही साथ स्थान जहां हम रहते, हमारा शहर, सृष्टि आदि। क्या हम इन विरासतों की देखरेख करते हैं जिन्हें प्रभु ने हमारे लिए सौंप दिया है? क्या हम इनकी सुंदरता की रक्षा करते, अथवा क्या हम चीजों का प्रयोग सिर्फ अपने लिए और अपनी सुविधाओं के लिए करते हैं? संत पापा ने विश्वासियों का आह्वान करते हुए कहा, भाइयों एवं बहनों, आइए हम बिना भय एक साथ चलें, इस निश्चितता के साथ कि प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं। आइए हम जागते रहें, अन्यथा हम उस समय सो जाएंगे जब प्रभु हमारे पास से पार होंगे। कुंवारी मरियम हमें मदद दें जिन्होंने प्रभु से मुलाकात का तत्परता एवं उदारता के साथ स्वागत किया, मैं प्रस्तुत हूँ। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini, nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने अनाज भरे जहाजों को यूक्रेन के बंदरगाह से प्रस्थान करने की अनुमति दी जाने पर खुशी व्यक्त की और कहा कि यह आशा का प्रतीक है कि उचित एवं स्थायी शांति प्राप्त की जा सकती है। संत पापा ने रविवार को देवदूत प्रार्थना के उपरांत कहा,
Desidero salutare con soddisfazione la partenza dai porti dell'Ucraina delle prime navi cariche di
मैं यूक्रेनी बंदरगाह से प्रस्थान करने वाले अनाज से भरे पहले जहाज का स्वागत करना चाहता हूँ। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद पिछले हफ्ते की शुरुआत में ओदेसा के बंदरगाह शहर से निकले 4 थोक मालवाहक जहाज रविवार को यूक्रेनी काला सागर बंदरगाहों से रवाना हुए। संत पापा ने कहा, यह कदम दिखलाता है कि वार्ता करना और ठोस समाधान प्राप्त करना संभव है जिससे प्रत्येक को लाभ होगा। अतः इस घटना को आशा के चिन्ह के रूप में देखा जाना चाहिए और मैं ईमानदारी से आशा करता हूँ कि इस रास्ते पर चलते हुए हम लड़ाई का अंत कर सकते हैं एवं एक उचित और स्थायी शांति तक पहुँच सकते हैं। यूएन ने यूक्रेन में अनाज के नौवाहन की कमी के कारण विभिन्न स्थानों पर अकाल के संभावित प्रकोप की चेतावनी दी थी। युद्ध के पहले यूक्रेन और रूस कुल गेहूं निर्यात का करीब 1/3 भाग पूरा करते थे। यूक्रेनी अनाज के जहाजों की निगरानी के लिए इस्तांबुल में एक संयुक्त समन्वय केंद्र स्थापित किया गया है और इसमें रूसी, यूक्रेनी, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों के स्टाफ हैं। यूक्रेन के समुद्री बंदरगाह प्राधिकरण के अनुसार रविवार को बंदरगाह छोड़ने वाले 4 थोक वाहक लगभग 1,70,000 टन मकाई और अन्य खाद्य पदार्थ ले जा रहे हैं। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से पहली बार शनिवार को यूक्रेन में अनाज से लदा एक विदेशी ध्वज वाला जहाज आया। उसके बाद संत पापा ने क्रोएशिया में सड़क दुर्घटना की याद की जिसमें मेजुगोरे तीर्थस्थल जा रहे पोलैंड के तीर्थयात्री घटनाग्रस्त हो गए और अपना जीवन खो दिया जबकि कुछ लोग घायल हो गए हैं। संत पापा ने माता मरियम से उनके लिए प्रार्थना करते हुए कहा,
La Madonna interceda per tutti loro, per i familiari.
हमारी माता मरियम उनके तथा उनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना करे। तत्पश्चात संत पापा ने संतियागो दी कोम्पोस्तेला में यूरोप की युवाओं की तीर्थ यात्रा को प्रोत्साहन देते हुए कहा,
Con gioia benedico ciascuno dei giovani che hanno partecipato.
मैं आनंद के साथ हृदय से आप सभी को आशीष प्रदान करता हूँ जिन्होंने इसमें भाग लिया है तथा उन्हें भी आशीष देता हूँ जिन्होंने इसके आयोजन के लिए काम किया है और साथ दिया है। आपका जीवन हमेशा एक यात्रा हो, यीशु ख्रिस्त के साथ एक यात्रा, ईश्वर और अपने भाई बहनों की ओर सेवा एवं आनंद की यात्रा। तत्पश्चात संत पापा ने सभी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का अभिवादन किया और अंत में अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Per favore, non dimenticate di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Mere Masiha, mere Khuda, tu mera sab kuch hai. Mere Masiha, mere Khuda, tu mera sab kuch hai. Jab main aata hu tere paas, mujhe deta hai tu saath. Jab main aata hu tere paas, mujhe deta hai tu saath.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने रविवार को देवदूत प्रार्थना का पाठ करने के बाद शनिवार की सुबह क्रोएशिया में हुई एक बस दुर्घटना में मारे गए पोलिश तीर्थयात्रियों को याद किया और पीड़ितों एवं उनके प्रियजनों को माता मरियम के हाथों सुपुर्द किया। बस उन्हें बोस्निया हर्जेगोविना के मेजुगोरिया तीर्थालय ले जा रही थी। दुर्घटना में कम से कम 12 लोग मारे गए और 32 घायल हो गए। क्रोएशियाई अधिकारियों ने कहा कि 3 पुरोहितों, 6 धर्म बहनों और तीर्थयात्रियों से भरी बस मेजुगोरिया जा रही थी। मेजुगोरिया के मरियम तीर्थालय में सालाना सैकड़ों हजारों तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं। पोलैंड के न्याय मंत्री और अभियोजक जनरल ने वार्सॉ अभियोजक कार्यालय को दुर्घटना के कारणों की जाँच करने का आदेश दिया है। और संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 8 अगस्त को ट्वीट कर संवाद करने हेतु प्रोत्साहित किया, क्योंकि उनके अनुसार हृदय का उपचार सुनने से शुरू होता है। ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, एक संवाद को पुनर्जीवित करना शब्दों से नहीं बल्कि मौन से होता है, आग्रह करने से नहीं बल्कि धैर्यपूर्वक नए सिरे से शुरुआत करके किसी अन्य व्यक्ति को धैर्यपूर्वक सुनने से होता है, उनके संघर्षों के बारे में सुनना और उनके अंदर की बातों को सुनना है। हृदय का उपचार सुनने से शुरू होता है। उधर सुसमाचार प्रचार के लिए बने धर्म संघ के प्रीफेक्ट स्लोवाकिया मूल के सेवानिवृत्त कार्डिनल जोसेफ टोमको का सोमवार 8 अगस्त को सुबह 5 बजे रोम में निधन हो गया। वे 98 वर्ष के थे। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा 1985 में बनाए गए कार्डिनल मंडल के सबसे पुराने सदस्य थे। कार्डिनल टोमको की मृत्यु के बाद कार्डिनल मंडल में कुल 206 कार्डिनल हैं, जिनमें 116 निर्वाचक और 90 गैर निर्वाचक कार्डिनल हैं। कार्डिनल टोमको का रोम में अपने ही अपार्टमेंट में निधन हुआ, जहां संत विंसेंट डी पोल की चैरिटी धर्म बहने उनकी देखभाल कर रही थी। पिछले 25 जून को ग्रीवा रीढ़ की चोट के कारण उन्हें जेमेली पोली क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। शनिवार 6 अगस्त को वे एक नर्स की देखभाल में उपचार को जारी रखते हुए अपने आवास लौट आए। अस्पताल में रहने के दौरान उन्हें राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो परोलिन ने भी भेंट की थी। 30 अप्रैल को संत पापा फ्रांसिस ने स्लोवाकिया तीर्थयात्रियों के साथ संत पापा पॉल षष्ठम सभागार में कार्डिनल टोमको का प्यार से स्वागत किया था और कहा, मैं कार्डिनल जोसेफ टोमको का हार्दिक अभिवादन करता हूं, जिनकी उपस्थिति हमें महसूस कराती है कि कलीसिया एक परिवार है जो बुढ़ापे के उपहार के रूप में सम्मान देना जानती है। संत पापा ने विनोदी अंदाज में कहा, लेकिन मुझे संदेह है कि ये मुझसे छोटे लगते हैं। कार्डिनल टोमको की मृत्यु का समाचार सुनकर मूल रूप से कोशीचे महाधर्म प्रांत के उडाउस्के से स्लोवाकिया धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने विश्वासियों को दिवंगत कार्डिनल टोमको की आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया। रोम में अंतिम संस्कार और स्लोवाकिया के कोशीचे में संत एलिजाबेथ महागिरजा घर में उन्हें दफनाया जाएगा। उधर उत्तरी निकारगुआ के माटागल्पा के धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष रोलांडो अल्वारेज ने सरकार द्वारा 5 कैथोलिक रेडियो स्टेशनों को बंद करने की आलोचना की थी। इस पर पुलिस ने धर्माध्यक्ष रोलांडो को और 6 कैथोलिक पुरोहितों को अपना निवास छोड़ने और पवित्र मिसा समारोह के लिए पास के महागिरजा घर जाने से भी रोक दिया। लोगों को स्वतंत्र रूप से आने जाने से रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों ने बैरियर लगा दिया है। धर्माध्यक्ष अल्वारेज और 12 अन्य लोग गुरुवार से अपने आवास में फंसे हुए हैं। धर्माध्यक्ष अल्वारेज ने शनिवार को पवित्र मिसा के दौरान कहा कि उन्हें नजरबंद किया गया है। उन्होंने माटागल्पा में अपने घर से सोशल नेटवर्क पर पवित्र मिसा प्रसारित किया। राष्ट्रपति दानियल ओर्टेगा और उनकी पत्नी उपराष्ट्रपति रोजारियो मुरिलो के आदेश पर निकारगुआ के अधिकारी आलोचना या विरोध के किसी भी आवाज के लिए लोगों पर कार्यवाही करते हैं। 150 से अधिक विपक्षी नेता ताले में बंद हैं। पुलिस ने धर्माध्यक्ष अल्वारेज पर हिंसा के कृत्यों को भड़काने और देश को अस्थिर करने के लिए मीडिया और सोशल नेटवर्क का उपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि वे औपचारिक आरोप तैयार कर रहे हैं। धर्माध्यक्ष अल्वारेज अधिकारियों से इस उत्पीड़न को रोकने की अपील कर रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। और यूरोपीय संघ का कहना है कि पुलिस की यह कार्रवाई मनमाना है और मानव अधिकारों के साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता का एक और उल्लंघन है। मार्च में सरकार ने निकारगुआ के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष वाल्डेमर स्तानिस्लाव को निष्कासित कर दिया। इसके बाद निकारगुआ ने अपने राजदूत को वाटिकन से वापस बुला लिया है। उधर इसराइली सेना और इस्लामिक जिहाद के फिलिस्तीनी मिलिशिया के बीच मिस्र मध्यस्थता की कार्यवाही शांति बहाल करने में सफल रही है। बीबीसी के अनुसार स्थानीय समय अनुसार रात 11:30 बजे युद्ध विराम लागू होने से पहले और तुरंत बाद दोनों पक्षों की ओर से चली गोलियों से मिस्र द्वारा मध्यस्थता वाले समझौते पर कोई असर नहीं पड़ा। इसराइल ने घोषणा की कि वह आज सुबह दोनों केरेम शालोम व्यापारिक पोस्ट को फिर से खोल देगा, जिसके बंद होने के कारण अन्य बातों के अलावा गाजा बिजली संयंत्र की गतिविधियों की समाप्ति और इरेज यात्री क्रॉसिंग, जहां से इसराइल में कार्यरत 14,000 अकुशल श्रमिक गाजा से इसराइल जाने में सक्षम होंगे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों द्वारा संघर्ष विराम का सम्मान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 3 दिनों की शत्रुता के बाद इसराइल और गाजा के बीच संघर्ष विराम का स्वागत किया। गाजा के पल्ली पुरोहित फादर गैब्रियल रोमानेली टिप्पणी करते हैं, हमें उम्मीद है कि यह सिर्फ एक संघर्ष विराम नहीं है बल्कि शांति वापस आएगी। हम सभी ठीक हैं, लेकिन असुविधाएं बहुत हैं। हाल के दिनों में हुई हिंसा ने आबादी के एक बड़े हिस्से को चौंका दिया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।